ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग और आगे आगे आ जाइए, कितनी जगह खाली पड़ी है, आगे आइए। नहीं तो वैसे तो जब फेस्टिवल होता है तो लोग आगे की सीट को पकड़ते हैं, आगे आगे सीट लेंगे। आज सीटें खाली हैं तो कोई आगे नहीं आ रहा। आइए आइए, आगे की सीटों पे बैठिए। तो आज हम लोग भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है ये। देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। इसका अनुवाद है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य ध्यान से सुनिए आप लोग। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। आपकी आवाजें इधर तक आ रही हैं प्रभु, प्लीज। चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह वेष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। वेष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में परिदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन को से श्रेष्ठ न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस अध्याय का नाम ही है गीता का सार। तो इसमें भगवान अभी बोलना शुरू हुए हैं। श्री भगवान उवाच 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू हुए हैं, और शुरुआत में ही भगवान कह रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा क्या तत्व है। वो बहुत ही सिंपल, बहुत सरल तर्क दे रहे हैं जो हमका सबका अनुभव है। हम सब ने ये शरीर बदले हैं, है ना, जैसे बता रहे हैं बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था। जो अभी तरुण अवस्था में थे हैं अभी, वो बाल्यावस्था में थे, हैं जो वृद्धावस्था में हैं वो तरुण अवस्था में थे, और जो आज बाल्यावस्था में हैं वो कल तरुण अवस्था में जाएंगे, है ना। लेकिन जो आत्मा है वो वैसे का वैसा रहता है, आत्मा नहीं बदलता अंदर से। इसी कारण से हम देखते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम वही हैं, हालांकि दूसरा व्यक्ति अगर हमें देखे तो वह पहचान नहीं पाएगा, है ना। जब हम बाल्यावस्था में थे और हम तरुण अवस्था में आ गए, है कोई 4 साल का 5 साल का देखा और आज आप देख रहे हो उसको 35 साल का हुआ हुआ, तो नहीं पहचान पाओगे आप, असंभव है ना, क्योंकि शरीर दूसरा आ गया, शरीर वो शरीर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं इसी तरह से आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर सत्र न मुह्यते, धीर जो विद्वान व्यक्ति है वो फिर इससे परेशान नहीं होता। ये तो आप देखो कैसे जो है, जब व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो कैसे लोग रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना। इस तरह से उनको देख कैसे लगता है कि जैसे ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति जो है हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना। वो सोचते ही नहीं है कि हाँ व्यक्ति को ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना है। तो यही बात जो है प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। और एक जो यहां पे प्रभुपाद जी मायावादी सिद्धांत का जो खंडन कर रहे हैं, मायावादी सिद्धांत क्या है, मायावादी सिद्धांत यह है कि वो मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये ना एक आत्मवाद, एक आत्मवाद। यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं आत्मा के एक आत्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, मतलब परमात्मा जो है, परमात्मा जो है वो खंडित हो गया, परमात्मा कई खंडों में बट गया। लेकिन अगर परमात्मा विखंडित हो गया तो फिर वो परिवर्तनशील हो गया। वो तो प्रभुपाद जी यहां बता सकते हैं कि ये हम बता रहे हैं कि ये हम मान नहीं सकते। तो जो लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो शास्त्रों के आधार पर नहीं कह रहे, वो उनकी कल्पना है। आत्मा का हमेशा अस्तित्व है और परमात्मा का भी अपना अस्तित्व है। भगवान बता रहे हैं कि मेरी दो तरह की प्रकृतियां हैं, आगे जाके भगवान इसका व्याख्या करेंगे 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान जो है उसमें भगवान ये बताएंगे कि दो तरह की प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति है एक अपरा प्रकृति है। तो जो अपरा प्रकृति है उसका तो शरीर बना है ना, अष्टदा भिन्ना प्रकृति अष्टदा, अष्टदा मतलब 8 तरह की है, जिसमें भूमि अपर नलो वायु, भूमि ना 5 तत्व हो गए ना, भूमि अपो मतलब पानी, अनलो अग्नि, वायु और खम, खम मतलब आकाश। तो 5 तत्व ये और मन बुद्धि अहंकार 3 तत्व ये, तो ये 8 तत्वों की जो है ये अपरा प्रकृति बनी हुई है। लेकिन इससे परे एक प्रकृति है, परा प्रकृति, वो क्या है, वो है आत्मा, वो जो है उत्कृष्ट प्रकृति है। तो हमेशा जो है ये प्रकृति जो आत्मा जो है उसका हमेशा अस्तित्व है, आत्मा परमात्मा, ईश्वरा परमेश्वरा, है ना, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर कई हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर जो है वो एक है, भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, नियामक, जो नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण करने वाले कई हम भी छोटे छोटे नियामक हैं, कोई फैमिली को कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, कोई ज्यादा फैक्ट्रियों को कंट्रोल कर रहा है, उनका नियंत्रण कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। सब कुछ कंट्रोल जो कर रहे हैं सारे ब्रह्मांडों को, सब चीजों को, वो है भगवान श्री कृष्ण। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब वृत्या। ये बात जो है, ये है जिस उद्देश्य से ये कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई, इसलिए इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कि कृष्ण जो है ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये लोगों को हमें बताना है, ये लोगों को हमें समझाना है, ये लोगों को पता नहीं है। लोग कुछ भी कहते हैं, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, जानते नहीं है भगवान कौन है। तो इसीलिए जब हम श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ते हैं तो फिर हमें भगवद गीता का जो मर्म है वो समझ आता है। क्योंकि भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में ही कि भगवद गीता को मेरे को कौन समझ सकता है। भक्तिया माम अभी जानाती, भक्तिया माम अभी जानाती, भक्ति ही मुझे समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। दुष्कृतनो मां मूढ़ा, पहले बोल रहे हैं मानुषिम हा अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तर्म आश्रितम। कि जो मूढ़ हैं, जो गधे हैं, मूढ़ का मतलब होता है गधा संस्कृत, भगवान कह रहे हैं अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तर्म आश्रितम। जो सोचते हैं कि मैं मानव का रूप धर के आया हूं, एक मनुष्य की तरह आया हूं, मनुष्य की तरह समझते हैं मुझे भी, वो क्या है, वो मूढ़ है, गधे हैं वो। वो फिर बता रहे हैं सातवें अध्याय में क्या कह रहे हैं, यही दुष्कृतनो प्रबदंते मूढ़ा, बता रहे हैं कि चार तरह के जो लोग हैं वो मेरी शरण नहीं लेते, जो दुष्कृत हैं। दुष्कृत मतलब जो गलत काम करने वाले हैं, कृत का मतलब होता है जो अच्छे काम करता है, दुष्कृत मतलब जो गलत काम करने वाले हैं, वो मेरी शरण कभी नहीं लेते। चार तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं। एक तो मूढ़ा, मूढ़ा जो जिनका कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मूढ़ा मतलब गधे हैं बिल्कुल, उनकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि के विहीन है, मूढ़ा। नराधमा, नरों में जो, मनुष्यों में जो अधम है। और माया अपर्त ज्ञाना आसुरी भाव आश्रिता, कि जिन्होंने माया ने जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया है। बड़े बड़े आप देखते ना विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर, फिलोसोफर, वो सोचते हैं कि हाँ हमने तो संस्कृत जानते हैं, हम तो संस्कृत के श्लोकों को पढ़ लेंगे और हमें समझ आ जाएगी भगवद गीता। नहीं, भक्तिया माम अब जानाती, अगर हम इस साइंस को, इस शिक्षा को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें भक्त के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भक्त ही जानता है। इसीलिए जब हम प्रभुपाद जी, जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जब प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है भगवद गीता, तो हमारे जीवन में फिर परिवर्तन आता है। ये तो कितने लोग हैं भगवद गीता को पढ़ने वाले, जानने वाले। तो यही, इस भगवद गीता को समझने के लिए हमें भगवान की भक्ति को अंगीकार करना है। आसुरी भाव, आसुरी भाव को छोड़ना है। आसुरी भाव क्या है, यही आसुरी भाव है। तो भगवान एक मनुष्य हैं, भगवान निराकार हैं, भगवान नहीं है, भगवान मर गए हैं, हम कई तरह के आसुरी भाव फैले हुए हैं। कलयुग में आसुरी भाव लोगों में ज्यादा है। असुर भगवान को मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते कि भगवान है, बल्कि भगवान की सत्ता को नकारने के लिए कई तरह की बातें करते हैं कि भगवान नहीं है। आप देख सकते हैं समाज में, देखिए आप। और इसी कारण से लोग दुखी हैं, इसी कारण से नानक दुखिया सब संसार, सुना ना आपने कहावत है, इसीलिए दुखी हैं क्योंकि भगवान की सत्ता को नहीं मान रहे, भगवान की शिक्षा को नहीं मान रहे, भगवान को नहीं मान रहे जिनके हम अंश हैं। तो प्रभुपाद जी, यही प्रभुपाद जी का आंदोलन यही है कि लोगों को बताएं कि कौन है भगवान। भगवान जो भक्त है वो भगवान को ऐसे दे सकते हैं आपको, जैसे ये चीज है, ये मैं आपको दे सकता हूं, है ना, किसी को भी दे सकता हूं मेरे पास है। इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं उनके पास भगवान होते हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं, किसको चाहे दे सकते हैं भगवान। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान का नाम, भगवान का पता, भगवान के कार्य सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं भगवान को, भक्त हैं। तो इसीलिए यही मार्ग है, एक जैसे साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसमें कोई भी आप चाहते हो रिजल्ट तो एक प्रोसेस से चलना पड़ता है, तरीका होता है एक, है ना। जैसे आप चाहते हो, आपने पढ़ा हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा, लेकिन खास परिस्थितियों में मिलाना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं पानी बन जाएगा, खास तरीका है जिस तरह से आप मिलाओगे तो जरूर पानी बनेगा, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी उस तरह का प्रयोग करो। इसी तरह से ये भगवद गीता में हमें बताया है, तरीका बताया है कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। और इसलिए इस तरीके को जो भी अपनाएगा, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो रशियन है, चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे मुसलमान धर्म से है, चाहे सिख धर्म से है, ईसाई धर्म से है, कोई भी उसका विश्वास हो, अगर वो उस प्रोसेस को अपनाएगा, उस तरीके को अपनाएगा, तो उसको भगवान मिल जाएंगे, भगवान को जान जाएगा, वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेगा वो। आज देखो समाज में कितना बुरा हाल है, रिसेशन आया हुआ है ना, रिसेशन, मंदी, इसको हिंदी में कहते हैं मंदी आई हुई है, बहुत अनएम्प्लॉयड, कितने लोग जो हैं नौकरियों से निकाल दिए जा रहे हैं, तो दुकानदार जो है बेचारे खाली बैठे हुए हैं। खाली हैं, वो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा उनके पास, लोग कुछ कुछ खरीद ही नहीं रहे, सच बात है ये है? और इंडिया में अभी इसका उतना असर नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में और ज्यादा असर है, और ज्यादा बुरा हाल है वहां में। तो क्या कारण है इसका है? क्या कारण है आप सोचते हो, क्या कारण है इसका है? यस, लोगों को ये नहीं पता कि प्रभुपाद जी ने जो कहा शास्त्रों में कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग जो है वो भूल गए हैं या भुला दिए गए हैं सिंपल लिविंग। ग्रीड के कारण लोगों ने अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए ऐसी जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिस चीज की जरूरत भी नहीं है उसको थोप देते हैं समाज के ऊपर, किससे, एडवर्टीजमेंट के जरिए। जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो इस तरीके से वो बनाई जाती है कि जब आप उनको देखते हो तो आपके मन में ये इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं अब इस चीज को लूं, इसको अब अपने पास लाऊं। मैं जो विज्ञापन देखते हैं ना, बड़े बड़े विज्ञापन, एक रिसर्च से पता लगा कि आज से कुछ साल पहले व्यक्ति जो है, मान लो 50 साल का व्यक्ति है जो, तो उसने पूरे 50 साल में इतने विज्ञापन नहीं देखे होंगे जितने आज जो है व्यक्ति थोड़े से साल थोड़े से महीनों में देख लेता है। उसने 50 साल की जिंदगी में उतने विज्ञापन नहीं देखे होंगे जितना आम व्यक्ति जो है थोड़े से महीनों में देख लेता होगा, 6 महीने 7 महीने में। आप समझ रहे हैं कैसे बम्बार्डमेंट हो रहा है, हमें समझना चाहिए। तो उसके कारण क्या है, फिर जो बैंक वाले लोन जो है वो लोन देते हैं, आप चिंता मत करो, आपको नई गाड़ी चाहिए वाली, ये लो लोन, लोन लो, ये लो। आप क्या सोचते हो आप नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, ड्रीम हाउस ऑफ योर ड्रीम यू कैन बाय, वो लिखा होता ना आईसीआईसी का या उसके बैंकों का, लोन लो हमारे से दो। फिर बस लोन लेने के बाद जो है फिर फंस जाता है, फिर आदमी है उसी को उतारने के चक्कर में और सब फिर। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जीवन को हमें सिंपल करना है। अगर हम चाहते हैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना तो हमें जीवन को सिंपल करना पड़ेगा, उसी में हमें सुख मिलेगा और हमें गोल अपने निर्धारित करने पड़ेंगे। सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ये सफलता नहीं है कि आप नोबल लॉरेट बन गए, नोबल प्राइज आपने ले लिया और आखिर में आत्महत्या कर रहे हो, आखिर में यहीं पे बंदूक रख के अपने आप को मार दिया, ये सफलता नहीं है। बहुत पैसा कमाया, नुकसान हो गया तो अपनी सारे, ऐसे सच्ची घटना बता रहा हूं, बहुत पैसा कमाया एक व्यक्ति ने, बहुत ज्यादा, फिर क्या हुआ, नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उसको, सारा पैसा उसका लूट गया, करोड़ों रुपया कमाया उसने, करोड़ों रुपया चला गया, क्या किया, घर आके पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, खुद को भी मार दिया, ये सफलता है? ये सफलता नहीं है। हमें समझना चाहिए सफल व्यक्ति का मतलब क्या है। मनुष्य जीवन में सफलता ये है कि हम भगवान का साक्षात्कार करें, आत्म साक्षात्कार करें पहले तो। इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब लिखी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये भी एक विज्ञान है। हम अपने आप को ही नहीं जानते हम कौन है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम दास हैं, सर्वेंट हैं, हम मास्टर नहीं है, हम भगवान के सर्वेंट नहीं बनेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे, मतलब अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे, इंद्रियों के गुलाम बनेंगे हम। तो ये जानना है, ज्यादा धन कमाने में, ज्यादा पैसा कमाने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि रिसर्च बताती है कि उल्टा है, जिसके पास ज्यादा पैसा आता है वो उतना ही दुखी है। लोगों को आम धारणा यही है कि जितना ज्यादा पैसा होगा हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, आम धारणा है, ये बिल्कुल गलत है। अब उबासियां ले रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कैसे आप जप भी कर रहे हैं, उबासियां भी ले रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कैसे काम चल रहा, समझ नहीं आ रहा आपको, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तो फिर अब चैंटिंग मत करिए ना, फिर सुनिए ध्यान से, ये समय चैंटिंग का नहीं है, आप सुनो ध्यान से। इसीलिए हम लोग जो है कृष्णा कॉन्शियस में आके भी हम कृष्णा कॉन्शियस को पकड़ नहीं पाते, तत्वों को समझ नहीं पाते। जैसे एक व्यक्ति था, आपको कथा सुनाता हूं, सुनिए तत्व समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा बच्चा था, उसकी मां कहती थी भाई तू सारा दिन खेलता रहता है, कुछ काम कर, गांव में कोई पढ़ाई नहीं थी उसकी, कहते सारा दिन खेलता रहता है, काम कर, बड़ा हो गया। वो बार बार कहती है तो वो कहते चलो आज जाता हूं मैं काम करने, वो जाता है काम करने, सारा दिन एक किसान की सेवा करता है। जब वो आने लगता है तो किसान जो है उसको थोड़ा सा जो एक पैसा जो है उसको दे देता है हाथ में, तो हाथ में ले लेता है वो पैसा, उसकी दिन की कमाई। वो खेलता खेलता आ रहा है, वो हाथ में पैसा पकड़ा हुआ, खेलता खेलता आ रहा है जैसे बच्चे होते हैं। और जब घर पहुंचता है तो माँ पूछती है भी हाँ क्या, कहाँ गए थे आज, मैं तो काम करने गया था, काम कर दो, कमाई कहाँ है। वो हाथ खुलता तो पैसा ही नहीं होता, क्योंकि हाथ तो खेलता हुआ आ रहा है, पैसा गिर जाता है। तो मां समझाती है बेटा जेब में रख के लाना चाहिए ना, जेब में रख के लाना चाहिए, हाथ में पकड़ के थोड़ा लाना चाहिए। ठीक है, फिर जब दोबारा जाता है काम करने, तो आपको पता है कि पुराने जमाने में तो बार्टर सिस्टम होता था, जरूरी नहीं कि आपको पैसा दे, कुछ भी दे देता है। उस दिन जो है किसान उसको मक्खन दे देता है, मक्खन निकला आज गाय का, चल तू मक्खन ले जा। अब मक्खन जेब में डाल लेता है, मां ने कहा था भाई जेब में डाल के लाना चाहिए, मक्खन देता है वो मक्खन जेब में डाल लेता है। तो जब घर पहुंचता है तो मां कहती है आज क्या किया, कमाई कमाई। वो कहती है ओ मूर्ख, और मक्खन था, मक्खन को तो आपको डब्बे में बंद करके लाना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है तुझे। समझ जाता है बेचारा, जब जाता है फिर कमाई करने, तो अब जो है उसके मुर्गी के बच्चे पैदा हुए होते हैं अभी अभी, तो फालतू होते हैं, ऐसे ही होता है ना, कहते चलिए मुर्गी के बच्चे ले जा, छह बच्चे ले जा, चल जा सारी कमाई के। अब वो एक लेता है डब्बी और मुर्गी के बच्चे उसके अंदर रखता है और ढक्कन लगा देता है अच्छी तरह से, और घर आता है मां कमाई, बड़े खुशी खुशी मां कमाई कमाई आज तो बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से लेके आया हूं, खोलता है तो मरे हुए बेचारे, वो ऐसे माथा पीट लेती है। तो कथा का महत्व हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, छोटी सी कथा बहुत बचपन में हमने सुनी, ये समझाने के लिए कि हमें जिस्त पकड़ना है, जिस्त तत्व। भगवान भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, तत्वता तत्व पकड़ना है, जिस्त पकड़ना है, तब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोलू के बैल की तरह सारी उम्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे कृष्णा, और आध्यात्मिकता में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे हम, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको बिल्कुल, कितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, क्योंकि लेकिन तत्व समझ नहीं पा रहे कि जाना कहां है, क्या करना है, मतलब क्या है, लगे हुए हैं कोलू के बैल की तरह, एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। वो कोलू का बैल सारी उम्र चलता रहता है लेकिन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता वो, सच बात है। इसीलिए तत्व समझो, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम और भगवान में। आप हरे कृष्णा कर रहे हो, भगवान आ रहे हैं और आप उबासियां ले रहे हो, भगवान कहां बैठेंगे आपके पास, कहेंगे कि आप मान लो किसी को बुलाओ अपने घर में, वो बेचारा आप रोज बुलाओ आओ जी आओ जी, वो आपके घर में टाइम निकाल के आए और उबासियां ले रहे हो, उसके सामने बात ही नहीं कर रहे कुछ, एक। और दूसरा, एक ही समय पे हम कान से दो बातें नहीं सुन सकते, जब भगवान के नामों का हम जप करें तो उसको सुने, ये वाइब्रेशंस जो है ये काम करेंगी और कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए मन में जप नहीं करना, उससे कोई फायदा नहीं होएगा। आपको ध्यान से बोलना है एक एक शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान से बोलना है सुनना, ये वाइब्रेशंस हैं। जब इस तरह से आप सुनोगे बोलोगे और देखो, फिर शुरू शुरू में हो सकता है आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे 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 जब आपको इसका अनर्थ दूर होने शुरू हो जाएंगे, जब जैसे जॉन्डिस दूर हो जाता है, तो कितना अच्छा लगेगा हमें। तो इसके लिए अलग समय निकालना है, भगवान बुद्धू नहीं है, जैसे आप भगवान के लिए समय निकालोगे भगवान भी वैसे ही समय निकालेगा आपके लिए। ये यथा माम परपद्यन्ते तांस्तय बजामे हम, आप भगवान के लिए ऐसे ही समय निकाल रहे हो बस, कभी गाड़ी में जाते हो कभी ये सुनते हो वो सुनते, भगवान भी जब आप बुलाओगे हे भगवान, हे भगवान कहेंगे अच्छा वो वाला भक्त, अच्छा ठीक है अभी देखता हूं, भगवान इधर उधर देखने लग जाएंगे, सुनेंगे नहीं। ये था मां पर पतन, भगवान बड़े चलाक हैं, बहुत चलाक हैं भगवान, चलाकों के बादशाह हैं, ठगों के ठग हैं, चोरों के चोर हैं, उनसे कभी हम जीत नहीं सकते। इसलिए भगवान को समर्पण करो, भगवान के लिए अलग समय निकालो। अगर हम 16 माला जप करने का हमें संकल्प है तो 2-2.5 घंटे निकालो भगवान के लिए 24 घंटे में से, तब फायदा है। चीटिंग नहीं कर सकते, चलो गाड़ी चला रहे हैं जब भी करते हो, चलो 2 काम हो जाएंगे, एक नहीं होंगे, वो गाड़ी का समय है, वो भगवान नहीं मानेगा मेरे को दिया समय, वो तो गाड़ी में लगा रहा था तू, गाड़ी चला रहा था मेरे को थोड़ा जप कर रहा था तू। तो प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको। यही गलती करते हैं हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमारे जो बहुत बड़े आचार्य हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक जप न करना ही सारे अपराधों की जड़ है। जो 10 नाम अपराध हैं उनकी जड़ क्या है, हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। क्योंकि हम जब ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हमारे अंदर से ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह अहंकार काम ये सब जाएंगे धीरे धीरे। इसी कारणों से तो अपराध होते हैं, ईर्ष्या के कारण ही हम किसी को दूसरे का अपराध करते हैं ना, दूसरे की निंदा करते हैं या अहंकार के कारण या लोभ के कारण, यही तो है कारण। अगर मान लो कोई व्यक्ति लोभी नहीं है काम ही नहीं है क्रोध ही नहीं है तो क्यों किसी को कहेगा कुछ नहीं। आप क्या कहते हो आप? नहीं नहीं इनसे फिर तो ये हमारे अंदर है, तभी हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं, किसी वैष्णव की निंदा कर बैठते हैं, ईर्ष्या के कारण किसी वैष्णव को छोटा दिखाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। तो ये अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे सब चीजें चली जाएंगी, कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और जप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा जो आंदोलन प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा खड़ा किया, ये ऑडिटोरियम इतना बड़ा मंदिर दुनिया भर में मंदिर, उसका एक ही कारण है कि लोग जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से करें, यही कारण के लिए बस, बाकी सारा इसी चीज के लिए है सारी चीजें। वही हम ध्यान पूर्वक नहीं करते, चाहे हम थोड़ा ही जप करें, मान लो हम 16 माला जप करने का हमारे पास समय नहीं है, मान लो तो 8 माला जप करें ध्यान पूर्वक करें, 4 माला करें ध्यान, वो फिर समय भगवान का है, उसमें चीटिंग नहीं है, वो चुरा नहीं सकते आप। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि यहां पे बोला है कि हमें खत्म करना है, 1 राउंड ऑफ चैंटिंग भी है इसमें, पता नहीं समय है कि नहीं है। आप लोगों को प्रश्न है तो ले सकते हैं, प्रश्न के लिए समय दिया हुआ है थोड़ा सा। किसी का कोई प्रश्न? तो आज जो कलयुग में है वातावरण वो ऐसा है कि जीव के स्वाद के लिए लोग मारते हैं जानवरों को खाने के लिए, है ना। तो पहले जमाने में भी जीव हत्या होती थी लेकिन उसका पर्पस था कुछ, जैसे क्षत्रिय करते थे जीव हत्या इसलिए कि वो साध सके, अपने निशाना को साध सके, और उनको अलाउड था जीव हत्या करना, है ना, क्षत्रियों को। जैसे एक डॉक्टर को अलाउड होता है कि वो काट सके उसको, कैडावर होता है ना, या मेंढक काट लेता है वो, या रैबिट्स पे या कुत्तों पे ऐसे वो प्रयोग करते हैं ताकि दवाइयां या ये चीजें मनुष्य के लिए वो दे सकें, तो अलाउड होता है। इसी तरह क्षत्रियों को ये अलाउड था। और जरूरी नहीं है कि जैसे आज ऐसा नहीं था पहले कि आप शेर की हत्या कर रहे हो कि वो शेर खत्म ही हो गए हैं, मतलब ऐसे नहीं कि शेर ही खत्म हो गए हैं कि उसको व्यापार कर रहे हैं। शेर अपने आप भी मर सकता है, है ना, जंगल में अपने आप ही, जंगल में जब ऋषि मुनि रहते थे तो मरे हुए शेर भी होते थे तो उसकी खाल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने उसको मारा तभी उसकी खाल। आजकल हम देखते हैं ना ऐसा हो रहा है, आजकल लोग व्यापार के लिए जानवरों को मार रहे हैं, इसलिए जानवर लुप्त होते चले जा रहे हैं, कई जानवर लुप्त हो गए हैं, कई जानवर हमारे जो बच्चे हैं वो देख भी नहीं पाएंगे, कई तो हम भी नहीं देख पाए, कई जानवर हमारे जीवन में ही लुप्त हो गए हैं। हो सकता है हमारे बच्चे शेर ना देख पाए कभी, सिर्फ फोटोग्राफ्स उनको नजर आएंगे कि हाँ कई जानवर कई पक्षी कई पेड़ पौधे जो हैं, जैसे हमें अपना ही अनुभव है, आपको भी शायद अनुभव होगा जो बड़े हैं, हम जब छोटे थे तो हम बहुत तरह के आम की वैरायटी आया करती थी, ऐसे नहीं 5-6 वैरायटी, अब बस 5-6 वैरायटी के आम आते हैं खत्म। हम अपने बच्चों को कभी बताता हूं, आप लोगों ने पता नहीं, हमने खुद खाया है एक आम, बहुत मीठा बहुत स्वाद बहुत टेस्टी, जिसे कहते थे मक्खी आम, उसको जब हम काटते थे तो उसके अंदर से मक्खी निकलती थी जीती जागती, किसी ने देखा भी नहीं होगा आजकल के बच्चों ने, तो वो कभी आते ही नहीं क्योंकि वो पेड़ काट दिए सारे के सारे, वो वैरायटी तो खत्म हो गई ना, लुप्त हो गई, वो तो लुप्त हो गई। कई ऐसे फल हैं जो लुप्त हो गए, हमने खाए हैं बचपन में, अब नहीं मिलते वो। तो ये है, ये नहीं था पहले, ये ग्रीड के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, हाँ, मृगशाला में बैठते हैं जब, तो आसपास जो सांप हैं और कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले बिच्छू हैं, वो नहीं आते। मृगशाला इसलिए बिछाते हैं ताकि आसपास से डिस्टर्बेंस ना हो कीड़े मकोड़ों से। और किसी का प्रश्न? हाँ पूछिए। ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं थी, उनके गुरु महाराज की प्रतिमा है, भक्ति सिद्धांत महाराज का। सैटरडे को, शनिवार को भक्ति सिद्धांत महाराज जी का जन्मदिन था, जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपना आसन छोड़ा अपने गुरु को आसन देने के लिए, वो गुरु जी है उनके, भक्ति सिद्धांत महाराज, इज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत महाराज। नो प्रॉब्लम, ध्यान हमारा भटकने दो, क्योंकि ध्यान मन जो है हमारा अभी बस में नहीं है, मन को बस में करने के लिए ही हम जप कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान को भटकने दो, लेकिन हम उनके साथ भटके नहीं। बार बार हम प्रयास करेंगे कि ध्यान इधर ही आए, बार बार प्रयास करें, लेकिन हम नहीं भटके। जैसे मान लो मन ने कहा कि ये काम जरूरी है, तो हम माला छोड़ के वो जरूरी काम करना शुरू कर दें, ये गलत है। आपको ये समझना चाहिए कि एवरीथिंग कैन वेट। प्रभुपाद जी ने कहा खुद, आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस इज चैंटिंग यूर 16 राउंड्स एवरी डे अटेंटिवली। इसका मतलब है प्रभुपाद जी ने कहा कि जितनी भी सेवाएं हैं उन सब सेवाओं में से सबसे महत्वपूर्ण सेवा है आप अपने 16 माला जप जो है ध्यान पूर्वक करो, रोज करो नियमित रूप से। प्रभुपाद जी ने कहा वो लोग जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवान के श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, उनके लिए कहा कि इन सब सेवाओं में से भी सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है भगवान के नामों का जप ध्यान पूर्वक करना। तो इसलिए मन भागने दो, लेकिन हम ये नहीं कि जप को छोड़ के और कुछ करने लग जाए। मन में आएगा ओह इसको फोन करना है, ओह ये करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा ही लग रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लो। आप कोई कागज पेंसिल रख लो, उसको ऐसा करो लिख लो, चलो मैं इसको नोट कर लेता हूं, लेकिन करो उसको जप के बाद। जप को जप से ऊपर ओवरराइड नहीं होने दो उसको, उस काम को। जब आप ऐसा करोगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, भगवान कहेंगे देखो ये मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर आप उस काम को इंपॉर्टेंस देंगे तो भगवान कहेंगे ये माया का भक्त है, ये मेरा भक्त नहीं है। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन ने भगवान थे और भगवान की सेना थी नारायणी सेना, वो दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, लेकिन अर्जुन ने भगवान को चुना, निहत था। तो इसी तरह से जो भी कार्य हमारे दिमाग में आ रहा है करने के लिए, मन कह रहा है, वो भी भगवान की ही शक्ति है, वो भी भगवान से ही रिलेटेड है ना, लेकिन ये साक्षात भगवान की हम सेवा में लगे हुए हैं, उससे रिलेटेड है, तो उसको हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है, जप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इस तरह से अगर आप करोगे तो धीरे 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 ध्यान भटकना भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया ना, मन में जप करने का लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, ये जब आपके कानों के जरिए जाएगी, ये वाइब्रेशंस काम करेंगी।
लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे मन भटकता है जब कभी माले पे जप करते हैं।
बुरा नहीं जा रहा, पानी ले लीजिए।
पानी नहीं सर।
हाँ, क्या हो रहा है? आपको लगता है कि माला पे जब जप करते हो तो मन ज्यादा भटकता है, ये मतलब है? हाँ, तो ऐसा है ना, जैसे आप देखो, आप जब कोई कमरा गंदा है तो क्या आप सफाई करना शुरू करो तो लगेगा कि सारे कमरे में धूल धूल हो गया, ज्यादा गंदा हो गया कमरा। जैसे अगर मान लो कारपेट है, कारपेट में सारी धूल जमी हुई है, अंदर नजर नहीं आ रही बिल्कुल, अब उसको झाड़ना शुरू करो तो कितनी धूल निकलती है, तो आप सोचो ये तो सब साफ था, वो मैंने तो सफाई करने के चक्कर में तो गंद डाल दिया।
ऐसा नहीं लगता कि माला को जॉब कंप्लीट करने के लिए करते हैं, मतलब माला 16 माला, 4 माला, 8 माला कंपल्सरी है। अगर एकाग्र हो गए एक चित मन से अपने आत्मा में जब करते रहे तो वो ठीक नहीं है?
क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य हैं वो खुद बोल बोल के जप किया करते थे। उनके जो सारे शिष्य हैं जो हमारे भी गुरु हैं वो भी बोल बोल के जप करते हैं। आप अगर मंदिर में आइए सुबह 5:15, 7:15, सब भक्त चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं सब भक्त बोल बोल के जप करते हैं। है तो तरीका यही है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु देखो नगर नगर गांव गांव बोल बोल के कीर्तन कर रहे हैं, मीराबाई ने भी ऐसे ही किया। तो कलयुग में यही तरीका है। आपका मन बोल बोल के भी बस में नहीं आएगा, मन को कहाँ एकाग्र करोगे, नींद आ जाएगी आपको। ये तो धोखा है, धोखा देने वाली बात है। ये मन हमारा कहाँ हमारे बस में है, कहाँ एकाग्र करेंगे हम।
तो क्या ये धोखा नहीं है कि एक टाइम लिमिट लेके और उसे एक वर्क की तरह हरे कृष्ण हरे इतना माला कंप्लीट करना है और कर रहे हैं, उसमें मन लगता नहीं है, बोल रहे हैं उसको ठीक ढंग से सुन नहीं पा, बस करते जा रहे हैं।
क्यों
एक मिनट, जब आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा। तो आपका क्या नाम है?
पुनीत।
तो पुनीत मिश्रा जी, हम और बात करेंगे बाद में, क्योंकि फिर अभी क्लास को अभी समेटना है, क्योंकि ठीक है ना, अभी बात करेंगे आपसे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं समझ गया। आपका शुभ नाम? महेंद्र। महेंद्र जी, वेरी गुड। महेंद्र जी पूछ रहे हैं कि जैसे उसका मन बुद्धि अहंकार तो आत्मा के साथ जाता है, तो फिर तो चेंज होगा ही नहीं उसका। तो इसलिए ये बात सच है, ये संसार का चक्र है। संसार का चक्र जो है आप काट नहीं सकते, संसार का चक्र काट नहीं सकता, ये चक्र चलता रहेगा। तो चक्र को काटने का एक ही तरीका है कि हम भगवान की भक्ति में लगें। ये भक्ति जब हम करेंगे तभी जो है हमारा मन बुद्धि अहंकार जो है बदलेगा। इसलिए इसको चक्र कहा है ना, संसार चक्र। जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु, जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु, जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु, बस ये योनियां बदलती जाती हैं। बस 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े हो आप। ये बहुत ही रेयर बात है, बहुत दुर्लभ बात है कि भगवान ने एवोल्यूशन करते करते आपको मनुष्य का शरीर दे दिया। इसीलिए कहा हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझ के आप जहर खा रहे हो अगर आप मनुष्य जन्म मिला और आप राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे, क्योंकि फिर चक्कर में पड़ जाओगे। यही एक मौका है चक्कर से निकलने का, 84 लाख का जो चक्कर है उससे निकलने का यही एक मौका है, और इसको भी गवा दिया आपने तो फिर गवा दिया सब। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी समय हो रहा है तो ये लोग आपको, क्योंकि ये खत्म करना चाहते होंगे। ये अभी राउंड तो नहीं करना ना, चैंटिंग तो नहीं ना? ठीक है, आप करिए, आइए, अनाउंसमेंट्स हैं आप सुनिए है।